यहाँ पर आज जो हम कलीसिया को देखना चाहेंगे, वो कहता है इफिसियस कलीसिया के बारे में पिछली बार देखा था हमने कि नाम के अर्थ को देखा था, उसके फैलाव को देखा था, बहुत कुछ है। और लेकिन आज हम स्मरण कलीसिया में देखना चाहेंगे, 5-6 पदों में बहुत कुछ छिपा परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है। तो वही स्थिति फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो पहले 2 अध्याय उत्पत्ति की स्थिति, वही आखिरी 2 अध्याय प्रकाश वाक्य व्यवस्थित, इसको दिमाग में बसा लीजिए। और अगर पढ़ के अध्ययन करके आप देख सकते हैं तो बिल्कुल वही चीज बार बार दिखाई देगी। तो कह रहा है आगे चल करके, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। जब हम इन कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने पिछली बार बोला था कि ये 7 कलीसियाएं लगभग कई विद्वान हैं, और विद्वानों ने अलग अलग रीति से इसको रखा है। कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बहुत ही अधिकार के साथ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर के लोगों का जो बहुत ही वचन के जानने वाले हैं उन लोगों का ये विचार है कि ये 7 अलग अलग काल हैं जो 7 कलीसियाओं के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। पीरियड 7 पीरियड, किस रीति से ये अलग अलग 7 पीरियड में किस प्रकार से कलीसियां चलेंगी और कलीसियाओं कौन कौन सी चीज का सामना करना पड़ेगा। हमने पिछली बार देखा था इफिसियस, तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उस स्वर पर उठा लिया गया। 30 ईस्वी से पहला जो पीरियड है वो इफिसियस काल का लगभग 300 ईस्वी तक चल है। सो प्रेरित कब है, लेकिन ये ऐसे पीरियड थे जिसमें सतावनी मसीहत में कभी पीछे नहीं हटी, कभी नहीं। ये मत सोचिए कि मसीहत में कभी सतावनी खत्म हो गई, नहीं नहीं नहीं, हमेशा उसके साथ बनी रही, याद तक कि उसके आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कितनी बार प्रयास किया गया लोगों द्वारा कि परमेश्वर की व्यवस्था को नाश कर दिया जाए। जब आप यज़केल की पुस्तक पढ़ते हैं, यर्मिया पढ़ते हैं, तो आप देखते किस प्रकार से उस पुस्तक को राजा ने जला दिया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको दोबारा लिखवाया गया। तो मसीहत के पीछे, यीशु मसीह के अनुयायी के पीछे आरंभ से लोग लगे रहे, उनका विरोध करते रहे। अगर मेरा और आपका विरोध आत्मिक जीवन के बारे में, यदि मेरा और आपका विरोध मेरे और आपके विश्वास के बारे में, यदि मेरा और आपका जीवन सुषमाचार के कारण है, तो ठीक है, परमेश्वर उसमें सहायक है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। लेकिन अगर वो विरोध मेरे अपनी नासमझी के कारण है, अपने अज्ञानता के कारण है, एक चीज को मैं सामने डालना चाह रहा हूं जो हमें मसीह बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सतावनी आ सकती है। लोगों की नौकरी छूट जाती है, लोग अपने घर से निकाल देते, लोग नौकरी से निकाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर साथ बना रहता है, परमेश्वर उपाय करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के जीवन व्यतीत करें, आगे हम देखेंगे। तब वो कहता है मैं तेरे क्लेश को और तेरी दरिद्र को जानता, दो चीज है। अब जब हम स्मरणा की कलीसिया के बारे में बातें हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखना चाहेंगे, मैंने 6 कालों को बात पूरा बताया नहीं है, लेकिन स्मरणा का जो पीरियड है वो लगभग शुरू होता है 100 ईस्वी से लेकर 313 ईस्वी तक। इसके नाम का अर्थ है गंधरस। क्यों इस नाम का स्मरण का नाम का अर्थ है? कई बार बाइबल कुछ स्थानों के नाम इसलिए ऐसे होते थे कि वो स्थान उसी चीज से फेमस होता था, प्रसिद्ध होता था। मैं पाते हैं तो गंधरस का कई तरह से उपयोग किया गया। गंधरस लगभग जब एक पेड़ जो जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं उसमें से वो निकाला जाता है, उसमें से पत्ते निकाले जाते हैं और उनको कुचला जाता है। और प्रभु 3 बार वो गंधरस का इस्तेमाल किया, जब वो क्रूस पर थे तो उसको जब प्यास लगी थी तो गंधरस मिला पानी उसको पिलाना चाहते थे, यीशु ने मना कर दिया। जब उसका जन्म हुआ तो सोना मुर्लोबान, सोना गंधरस और लोबान, इस चीज को चढ़ाया गया, मुर जिसको बोलते हैं चढ़ाया गया। तो ये उसके ना केवल सोना शासकीय का प्रतीक था, लेकिन मुर जो था या गंधरस जो था उसके बलिदान का प्रतीक था। राजा जन्म हुआ है, जन्म के समय में भी ये 3 मजूसी आए थे, इन 3 मजूसी में से एक मजूसी ये गंधरस को लेकर आया था जिसने यीशु मसीह के चरणों में उस समय अर्पण किया जो वो बालक चरणी में पड़ा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, वो क्रूस पर थे और प्यास लगी तब उसके सामने उनको इसको गंधरस का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तीसरी बात, वो मरे और मरकर दफनाए गए, उनको गंधरस लपेटा गया। और उसी के बाद आप देखते हैं जब महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के पास आती कि लोथ को द्रव से लपेटा जाता था। मम्मीज जो देखते हैं कई जगह पर, से जो लखनऊ में चिड़ियाघर वहां पर एक म्यूजियम पर भी आप जा, एक कष्ट से एक क्लेश के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्मरण का नाम गंधरस था क्योंकि वहां पर पार वहां से होता था, इस जगह से गंधरस तैयार करके बहुत सारे आसपास के में भेजा जाता। ये स्मरण शहर छोटा था और इसकी खुशबू, मैंने कहा ना जितना उसको कुचला जाता था उसको अंदर खुशबू नहीं थी। और यही है, यही प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अगर कुचला ना होता, उसकी सुगंध मेरे और आपके काम ना आती। मसीहों के भी कई बार कुचला जाता है, और बहुत सारे जीवनों को हम देखते हैं। आज हम देखेंगे एक दो जीवन के सामने, हम इतिहास में देखेंगे जो हुए हैं उस समय में, इस काल में। सो कह रहा है कि मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। ठीक है, स्मृति के विश्वासियों, कलीसिया के लोगों, मैं जानता हूं कि तुम कौन सी क्लेश, किस प्रकार से तुम विरोध का सामना कर रहे हो, किस प्रकार से तुम सतावनी का सामना कर रहे हो, किस प्रकार से तुम पीड़ा का सामना कर रहे हो, मैं जानता हूं। परमेश्वर कुछ जानता है। मेरे प्रियो, कई बार हम समस्या को सोचते हैं, शायद हम ही समस्या को सामना कर रहे हैं, वो शायद मेरे माता पिता ना जाने, शायद मेरा पति पत्नी ना जाने, शायद मेरे बच्चे ना जाने, मित्र ना जाने, लेकिन परमेश्वर सबको जानता है। अगर परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है तो भलाइयों को भी जानता है, परमेश्वर हमारी आस्था को भी जानता है, परमेश्वर हमारी निर्भरता को जानता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया है, और वो मुझे और आपको भली भांति जानता है, और इसलिए मेरी और आपकी निर्भरता और अधिक परमेश्वर पर होनी चाहिए। मैं तो अपने आज को जानता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं, जब HL में था और HL से निकल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि तुम आज HL छोड़ दो, कल तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो उस समय 6 महीने की थी, उसका शादी का, उसका प्रभु ने यही वचन दिया था, किसी के द्वारा सिखाया था मुझे। मैंने कहा मैं अपने कल को नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूं जो मेरे कल को जानता है। मैं अपने कल को नहीं जानता, पर मैं उसको जानता हूं जो मेरे कल को जानता है, और अगर हमारा जीवन उसके हाथ में, तो वो मेरे कल को कभी बिगड़ने नहीं देगा, कभी बर्बाद नहीं होने देगा, कभी हानि नहीं होने देगा। और इसलिए मेरी और आपकी निर्भरता और अधिक उस परमेश्वर पर होनी चाहिए जो सच्चा परमेश्वर है, जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, जो मुझसे और आपसे चिंता करता है, जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर कुचला गया है, जिसने पीड़ा सही है, दुख सहा है। कौन सी पीड़ा थी जो उसने नहीं सही? उसने प्यास की पीड़ा को सही, नींद की पीड़ा को सही, उसने दर्द की पीड़ा को सही, हर तरह की कौन सी चीज थी जो उसने ना सहा? सब कुछ सहा, उसने सब कुछ उसको अनुभव था। तो कहता है मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। कलीसिया के बारे में अगर ये कहा जाए, ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो धनी नहीं है, निर्धन है, परंतु विश्वास में बहुत अधिक धनी है। निर्धन है लेकिन विश्वास में बहुत अधिक धनी है, ये ऐसी कलीसिया है। सो ये सच है, कह रहा है कि मैं तेरे को जानता हूं, तेरी दरिद्रता को। बहुत अधिक ये धनवान नहीं थे इस तरह से जैसे इफिसियों के लोग थे, ऐसा नहीं। बहुत बाइबल में कई जगह कई कलीसिया, लेकिन विश्वास के इतने अधिक धनी थे कि सारे में संघर्षों के बीच में भी इन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा था। वो कह रहा है कि कंगाल है परंतु धनी है, कंगाल परंतु धनी है। और तब आगे चल के वो कहता है तथा उनकी ईश निंदा को भी मैं जानता हूं। उनकी किन की? जो तेरे विरोध में है। अब वो कह रहा है स्मृति के कलीसिया, तुम गंधरस के समान हो, तुम्हारी सुगंध, चाहे तुम कितने कुचले जाओ, चाहे कितने दबाए जाओ, चाहे तुम कितने तुम्हें पीड़ा हो, लेकिन तुम्हारी सुगंध फैलती चली जा रही है। और ऐसे समय में तुम्हारे पास यदि संसारिक धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, विश्वास में तुम धनी हो, उसी विश्वास में धनी होने के कारण तुम सब कुछ का सामना करने तैयार हो। फिर वो कह रहा है तू धनवान है, तू ईष्ट निंदा को भी जानता हूं। मैं ईष्ट निंदा, क्या ईष्ट निंदा थी? अगर हम रोमियों के दूसरे अध्याय में देखेंगे तो कहता है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। अब इस स्मृत नगर में बहुत सारे यहूदी इधर उधर से आकर बस गए, वे अपने आप को यहूदी तो कहते थे, लेकिन रोमियों उसके दूसरे अध्याय में इसको और स्पष्ट किया गया किस प्रकार के यहूदी। एक दो पद हम देख लेंगे, रोमियों उसका दूसरा अध्याय 28-29। क्योंकि जो प्रगट में यहूदी है वो यहूदी नहीं, ना ही वो खतना है जो बाहर या देह में है, परंतु यहूदी वही है जो मन से है, खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख के द्वारा, और उसकी प्रशंसा मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। 28 पद, जो प्रगट में यहूदी हैं वो यहूदी नहीं है। तो बहुत सारे यहूदी थे जो अपने आप को यहूदी तो कहते थे और आकर मिल गए थे। उस समय ऐसा हो रहा था, इस समय ऐसा था, रोमी शासन था, यहूदी भी लोग थे, यूनानी भी थे, और बहुत सारे यूनानी भी जगह जगह से आकर बस चुके थे। हमेशा ऐसा होता था, ध्यान दीजिएगा, कि जो व्यापार का स्थान होता था, लोग काम ढूंढने के मारे उस स्थान पर आ जाते थे, और इसीलिए स्मृति में बहुत ही लोग आकर बाहर से बस गए थे। तो इनके जीवन तो यहूदी के रूप में नहीं दिखाई देते, इनके कार्य यहूदी के रूप में नहीं दिखाते, कहते तो थे कि हम यहूदी हैं, लेकिन उनके कार्य उस तरह से नहीं दिखाई। और इसीलिए वो कह रहा है कि क्या है कि जो अपने को यहूदी कहते पर है नहीं, पर वो क्या है? शैतान के सभाग्रह हैं। कैसे शैतान के सभाग्रह हैं? उसको अभी हम आगे देखेंगे कैसे शैतान को कह रहा है। ईश का एक बहुत बड़ा पाप जो शुरू से लेकर आज तक मनाता है, खासतौर से आप अगर मुस्लिम कंट्री में जाए तो ईश आपने किसी भी तरह से उनकी धार्मिक पुस्तक में अल्लाह के विरोध में के विरोध में कोई भी बात कहती तो अपना करना अपने शब्दों के द्वारा मान करना आद माना जाता। आज भी यहूदी के देशों में और ऐसे देशों में इस्लामिक देशों में माना जाता है। और उस समय लोगों को मार दिया जाता था अगर उन्होंने ईश निंदा की। प्रभु यीशु मसीह पर भी तो ये दोष लगाया गया था, इसी तरह से लगाता है कि व्यवस्था को नहीं मानता है, व्यवस्था का अपमान करता है। ये पौलुस पर भी लगाया था, इसीलिए उसको अरेस्ट भी किया गया था। ये सब कुछ ये उस समय चाहे वो अपने काम कुछ करे ना करे इस बात को दे। और ये हमारे भारत देश के लॉ में भी है, भारत देश के अंदर। और इसीलिए हम अपने यहाँ लोगों को सिखाते हैं अगर किसी कलीसिया में कोई भी परेशानी आती है, कोई विरोध करता है, कुछ भी कहेंगे, उनकी कंप्लेन करेंगे नहीं, कंप्लेन पर ध्यान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके उस कंप्लेन ये लिखवाएंगे उन्होंने हमारी बाइबल को फाड़ा फेंका उसकी निंदा की तो उन पर जाएगा। सब कर सकते हैं वो, लेकिन हमारी बाइबल को हमारे धार्मिक इसको अगर उस भाषा में बोले धार्मिक पुस्तक का उसका अनादर नहीं कर सकते, उसका अनादर नहीं कर सकते, उसको फेंक नहीं सकते, उसको पांव के नीचे नहीं कर सकते। कई बार वो समझाते हैं कि इस बात को ध्यान में तो वो हमारे भारत के संविधान के अंदर माना जाता है। हमारे देश के संविधान को पढ़ना भी जरूरी और अच्छा होता है कि उसको जाने दें। लेकिन उस समय से चला आ रहा है। पर ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग मसीहों को सता रहे थे। क्यों सता रहे थे? उनकी दृष्टि में सी लोग अन्य विश्वास में थे कि यीशु को उन्होंने स्वीकार नहीं करा था। यीशु को उन्होंने स्वीकार सबसे यीशु मसीह के थे, आज भी है, फर्क नहीं आया है। लेकिन किस तरह की चीजें थी वहां पर जो आगे चल के हम देखते हैं। वो कह रहा है जो क्लेश तुझे सहने पर है उसे मत डर, अपने विश्वास पे खड़ा हुआ। और उसके बाद वो कहता है शैतान तुम्हें में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर के तुम 10 दिन तक तुम्हें क्लेश होगा। ये 10 दिन 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक उसका मतलब नहीं है। पहले पत्र में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 दिन 1 दिन के बराबर। तो ये 10 दिन क्या दिन है? आजकल बताते हैं कि सुमरना के समय में उस समय कर कम से कम 100-150 साल की समूह में वो 10 ऐसे शासक हुए हैं। इसको ध्यान दीजिए, शासक हुए हैं जिनके शासकों में अलग अलग साल में कोई 5 साल रहा, कोई 15 साल रहा, कोई 25 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 10 साल रहा। इन 10 अलग अलग शासकों ने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मेरे पास बाद में आ जाइएगा, इनके में किस प्रकार से मसीह को सताया गया, किस प्रकार से कलीसिया सताया गया, एक दो जनों को हम देख। उस समय इसमें कलीसिया का जो पास्टर था या सेवक था उनका नाम पॉलीक्राफ था, उनका नाम था, और वो वहां पर सेवा कर रहे थे और उनको बहुत अधिक सताया गया। यहां तक कि उनको कई बार उनको जंगली जानवर के बीच में डाला गया, कई बार उनको जंगल में फेंका गया, लेकिन उन्होंने अपने मसीहत का इनकार नहीं करा। वो 86 साल के आगे थे, बढ़ चुके थे, और यूहन्ना की भी मृत्यु होने वाली थी। यूहन्ना भी मृत्यु के समय बिल्कुल निकट था। इनको उस समय शासकों ने नीरो शासन से शासन शुरू हुआ था। नीरो बहुत क्रूर शासक था, उसने मसीह को बहुत सताया था, बहुत मारा था, मसीह की गर्दनों को उड़ा देना। तो ये जो 10 दिन थे, 10 दिनों में 10 शासक विभिन्न प्रकार से है और सबने प्रभु को के लोगों को परेशान किया। तो उसी समय ये पॉलीक्राफ था, पॉलीक्राफ को खा कर दिया गया और आग जल रही थी और आग में उसको खड़ा कर दिया गया, या तो तुम यीशु का इनकार करो नहीं तो तुमको इसी में भस्म। उन्होंने कहा एक बात कही, इस यीशु ने विश्वास किया है 86 साल के अंदर उस प्रभु ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अगर आज उसके कारण मुझे जलना भी पड़े, मरना भी पड़े, मैं तैयार हूं। उसको बांधा नहीं गया था, आग में ऐसी खड़ा किया गया था और ये पॉलीग्राफ उस समय उस अग्नि में यीशु के कारण शहीद हो गया। और ऐसे कितने शहीदों का वर्णन है जब हम रिफॉर्मेशन धर्म सुधार के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, इतने लोग ऐसे एक के बाद होते रहे। तो ये पॉलीग्राफ उस समय उस कलीसिया का सेवक था, शिक्षा दे रहा था, सब कुछ देता था, परंतु परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, धनवान नहीं था लेकिन विश्वास का धनवान। और जब उसे कहा गया तू यीशु का इनकार कर, उसने कहा जिस प्रभु पर विश्वास करने द्वारा उस प्रभु ने मुझे धोखा नहीं दिया है तो मैं आज उसको धोखा कैसे दूं, मैं आज उसका इनकार कैसे दूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, कि उस आग में وہ اس سے جیون پھنس، لیکن اس نے یشو کا انجیل ہمیں ذرا گاؤں میں گالی دے دیتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نراش ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں بائبل کے اندر اور اس اتہاس کے اندر. اس لیے بہت ضروری ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اچھا میں رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے بارے میں ہم ہندی میں کچھ تیار کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ان کے بارے میں جان سکیں کہ بائبل کس طریقے سے بھری پڑی ان شہیدوں سے، اتہاس بھرا پڑا شہید. اس نے یشو کا انکار نہیں کرا. ہماری بہن وندنا ہے یہاں پر، میں نے کئی بار پہلے بتایا، ان کے پریوار میں بھی ایک جنا ایسے جنہوں نے سب سے پہلے سوسماچار کو، ان کو پیڑ پہ باندھ کر کے کانٹے مارے گئے ان کے اوپر. میں پرسنلی جانتا ہوں کتنے سے لوگ تھے وہ جو پرمیشور کی وانی کو سن کر، پرمیشور کی آواز کو سن کر وشواس کے دھنی بن گئے، وشواس کے دھنی بن گئے. میرے پریو یہ میرے اور آپ کے لیے چنوتی پورن ہے. یہ اسمرن کلیسا کے لیے تو ہے سندیش، لیکن یہ آج میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم نے یشو مسیح پر کیسا وشواس کیا؟ ہم پربھو یشو مسیح میں سچ میں وشواس میں دھنی ہیں؟ یہاں ادھر لٹک رہے ہیں، ادھر لٹکتے ہیں، ادھر لٹکتے ہیں، ادھر لٹک رہے ہیں. گنگا گائے تو گنگا داس، جمنا گائے تو جمنا داس. یعنی پربھو کو ہم نے پایا تو سب کچھ چھوڑ دیا. ہماری بہنیں جب وشواس میں آتی ہیں بہت چیز ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، ان کے پاس بہانے بہت رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانا ان کے پاس. اور میرے پریو ہمیشہ ہر بات کے لیے بہانا آپ کے پاس رہے گا، ہر بات کے لیے بہانا رہے گا. یا تو سادھارن وشواس ہوگا، وشواس کے دوارا آپ کا جیون دکھائی دے گا، نہیں پرانی چیزیں بیت گئی، سب ناش ہو گئی، سب اگنی میں جل. یا تو وہ چیز رہے گی جو وشواس کے دوارا پرگٹ ہو. اور اسی لیے کہہ رہا ہے تو نردھن تو ہے، کنگال تو ہے، لیکن تو دھنی ہے. اور پرمیشور مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ میں اور آپ وشواس کے دھنی بنے. میں نے ایک کے بارے بتایا کیول پالیکراف کے بارے میں جو کس پرکار سے اس، لیکن اس کے شبدوں کو دھیان رکھیے کیا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا تھا کہ 86 سال تک میرے پربھو نے مجھے کبھی، 36 سال میں کئی بار ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، ویروت کا بہت، پر اس نے انکار نہیں کیا اور اپنے پراڑوں کو دے دیا. میرے پریو یہ سچ ہے، مسیح جیون ایک بلیدان کا جیون ہے. اس نے میرے اور آپ کے لیے کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے پد چن دے دیے تاکہ تم اس پر چلو. ہم بپتسمے سے ہمیں یاد کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے پد چنوں پہ چل کے بپتسمہ لینا ہے، لیکن جب سیکریفائس کی بات آتی، تیاگ کی بات آتی، آگیا کاریتا کی بات آتی، وہ ایسا آگیا کاری رہا، اس نے کروس کی مرتی، کروس کی مرتی سہ لی، پتا نے جو کچھ کہا اس نے پورا کیا، اور اس نے کہا وہ آگیا کاری رہا، ہمیں اس کے پد چنوں پر چلنا ہے. میرے پریو کیول اس بارے میں وہ کے پاس جائیں گے بیماری چنگی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ضرور ہمیں بیماریوں کے لیے پرارتھنا کرنی چاہیے، لیکن ہماری پراتھمکتا یہ نہیں ہے. ہماری اصلی بیماری ہمارے اندر ہے، وہ پاپ کی بیماری ہے. اسی لیے آگے وہ کیا کہتا ہے، ابھی ہم آج جائیں گے اس میں دیکھیں گے یہ کیا کہتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے 10 دن، تو 10 دن یہ 10 الگ الگ شاشک ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا، بہت سارے ہیں. نیرو شاشک تھا، ڈومیٹین ٹرازن تھا، پیوس تھا، بہت سارے الگ الگ ہیں جنہوں نے اس ریتی سے، لیکن بہت سارے مسیحوں کو مار ڈالا. لیکن کی بات یہ ہے، مسیحوں کا ویروت کرنے پر بھی، مسیحوں کو مارنے پر بھی، مسیحوں کو جلایا، اس نے جلایا، وشواسی کو جلایا، سب کچھ جنگلوں میں چھپا کے رکھا، گفاؤں میں چھپا کے رکھا، لیکن اس سب کچھ کے بعد بھی اس شاشک کی پتنی نے اور بیٹی نے وشواس کر لیا. یہ 10واں شاشک تھا، وہ مسیحوں کا ویروت کر رہا ہے لیکن پربھو کا کام ہو رہا ہے. اس کی پتنی پربھو یشو مسیح پر وشواس کر رہی ہے، اس کی بیٹی پربھو یشو مسیح پر وشواس کر رہی ہے. وہ جان رہی ہے کہ جس یشو کا یہ وہ یشو میں کیا، مسیحوں کو دیکھ کر اکٹھا کر کے جنگل میں لے جا کے گفاؤں میں چھوڑ دیتے تھے اور گفاؤں سے نکلنے نہیں پاتے تھے. اس سمے مسیحوں نے بہت ستاونی کہی، جو 7 کلیسیاں ہیں اگر پڑھتے آئیں گے، دن کرتے آئیں گے، ایک گھور کلیش کا سمے تھا. اور یہی وہ پردہ کھل رہا ہے کہ 10 دن اور 10 ایسے شاشک ہوں گے جس کے بارے میں کچھ ورنہ ہوتا ہے، اور تب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس ریتی سے آگے. پر اسی سمے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، یوسیبون تھا، ان لوگوں نے اس سال میں کلیسیاں میں دھڑ ہو کر کے کلیسیوں کی بڑھوتری کا ایک کارن بن گئے. ایک اور کلیسیا پریشان ہیں، ان کا ویروت وشواسی کو اپمانت جلایا جا رہا ہے، لیکن دوسری اور پربھو اپنے کام کو کر رہا ہے. پربھو کام کا بھی روک نہیں. پہلے تو کام اس کا 5واں ادھیائے 38-38، یعنی پرمیشور کا کار ہے تو اسے کوئی بھی روکنے نہیں. بھارت کی کل استھتی کیسی کیوں نہ استھتی ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی کلیسیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور معلوم ہے ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ بول رہا اس میں اچھا بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. چھٹنی بھی ہو رہی ہے. 12 بنکی میں ایک بار ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے، ایک پروگرام بہت پہلے موسم میں وہیں تھے، اور جب وہاں پر کاریکرم ہونا تھا، کیمپسٹ کی ٹیم گئی تھی، بھائی کمل اس سمے کیمپس کروسٹ میں تھے، تو قریب ہم لوگوں نے 300 لوگوں کے لیے کاریکرم کرا تھا. ایک دم سے وہاں پر ایک پاسٹر تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے جا کے، وہ بہت دشٹ تھا، उसने जाके कुछ आरएसएस के लोगों से मिल गया और कहा कि सियोन चर्च में यहां पर धर्मांतरण हो रहा है। कलीसिया धर्म परिवर्तन नहीं होता, कलीसिया में वचन सिखाया जाता है, जीवन के बारे में बात की जाती है, हृदय परिवर्तन की बात की जाती है, पाप से छुटकारे की, जीवन और शांति की बात की जाती है। उन्होंने पुलिस को बताया और देखते 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 दो तीन पीएसी की गाड़ी आ गई और यह आ गया, बहुत चर्च में सब सब कुछ ऐसा हो गया। खैर उन्होंने मीटिंग नहीं होने दी, जो सेवक प्रचार करने गए थे कि हम लोगों ने उनको छुपा कर रखा। मुझे उस दिन ना जाना था पर दूसरे भाई लोग वहां पर थे देखने के लिए। सो बहुत ही देर तो उस समय बहुत सारे लोग गांव के लोग जो आए थे डर के मारे भाग, लेकिन वहीं कुछ औरतें जिन्होंने बहुत ही खड़ा होकर दृढ़ता के साथ साक्षी भी दी। एक बहन थी उसको घेर लिया, बिल्कुल साधारण, पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन उसने इतनी मजबूती के साथ उन लोगों से बातचीत करी, साक्षी दी उसने अपने आप को और बहुत ही दृढ़ता के साथ उसको रास्ते में रोक लिया गया। मेरे प्रियो हर तरह के लोग हैं, यहां पर भी अगर हो जाए मुझे नहीं मानो आपके लोग खड़े हो पाएंगे या कितने लोग डर के मारे भाग जाएंगे। इसीलिए कहते हो मत डर, इसीलिए कह रहा है ठीक है क्लेश आएंगे, परेशानी आएंगे और होता आने वाले दिनों परमेश्वर की दया, परमेश्वर जानता सारी बातों का। हमारे भारत देश में ही, हमारे देश में क्या होने पर आक्रमण हुआ है, ऐसी बात नहीं, पर परमेश्वर अपने काम को करता है। सो इस चीज को देखना। तो कह रहा है कि शैतान कितनों को बंदी गृह में डालने पर ये सब कुछ है, मैं तुझे, वो कह रहा है प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। क्या करूंगा? जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अब ये मतलब नहीं मैं सड़क पे खड़ा जाऊं तुम मुझे मार रहा हो मार दो, मैं तो प्रभु को जानता हूं, मुझे मार दो के मुझे जीवन का मुकुट, मूर्त की बात नहीं है। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मुझे और आपको, आप दो चीजें हैं, परमेश्वर एक तो मुझसे चाहता है कि हम डरे ना, दूसरी परमेश्वर चाहता हम विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग परमेश्वर के प्रति, विश्वास योग उसके सुसमाचार के प्रति, विश्वास योग उसके साक्षी के प्रति, विश्वास योग अपने पवित्र जीवन के प्रति। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में विश्वास योग्यता चाहता है। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु मेरे और आपके, वो मुझसे और आपको साधन मसीह बना के जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता कि हम क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चाहता है। और ये वो कह रहा मत डर, बाइबल में लग 65 बार मत डर शब्द आया है, 365 बार, और प्रत्येक दिन के लिए एक मत डर है। जब मैं उठता हूं परमेश्वर का वचन मुझे याद दिलाता है तुझे सेवा करनी है, तुझे प्रचार करना है, तुझे लोगों से मिलना है, तुझे तुम मत डर। पाप से डरना है, शर्म से हमें डरना है, लेकिन धार्मिकता के लिए हमें नहीं डरना है, पवित्रता के लिए हमें डरना है, हमें गलत बातों के लिए डरना है लेकिन धार्मिकता के लिए डरना है। कह रहा है वो कहता है तब आगे चल करके मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जीवन का मुकुट, ये जो कभी नाश ना होने पाएगा। बाइबल में करीब 5-6 मुकुट के बारे में अलग अलग वर्णन करता है। पहला कृतियों का 9:25 पद में नष्ट ना होने वाला मुकुट, वो मुकुट है जो कभी नष्ट ना होगा। पहला कृतियों का 9:25 पद। दूसरा तीमोथियुस 4:8 पद धार्मिकता का मुकुट, ये मुकुट है जो परमेश्वर जी और आपको मिलेगा। तीसरा है याकूब 1:12 जीवन का मुकुट जो प्रकाश वाक्य में पढ़ते हैं। पहला पद उसका 5:4 पद महिमा का मुकुट, वो मुकुट जो परमेश्वर की महिमा से भरा है। मेरे प्रिय आपको मालूम है यूहन्ना 17:5 पद में प्रभु यीशु मसीह यह प्रार्थना करते हैं हे पिता तुम मुझे अपनी वही महिमा मुझे दे जो जगत की उत्पत्ति में मेरे तेरे साथ थी। जो जगत की उत्पत्ति के समय में मेरी पुत्र कह रहा है, पुत्र कह रहा है, यीशु कह रहा है मेरी पिता तेरे साथ थी, वो महिमा उस समय उसके साथ था। और एक समय आएगा कि उसी महिमा में को मेरे साथ मुझे और आपको प्रवेश कराएगा। तब वो कहता है जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं हो। दूसरी मृत्यु कौन सी? दूसरी मृत्यु प्रकाश वाक्य उसका 20:14 पद, यहां पे देखिए दूसरी मृत्यु 13:14 पद समुद्र ने उन मृतकों में से जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतकों को दे दिया, उनमें से प्रत्येक न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया, उनमें से प्रत्येक का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिया, परमेश्वर डालेगा, लेकिन क्या होगा? ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु। मेरे प्रियो वो आग कभी बुझ नहीं पाएगी जो उसको स्वीकार करेगा। मैं अक्सर बोलता हूं जो एक बार जन्म लेगा वो दो बार, जो दो बार जन्म लेगा वो एक बार मृत्यु का सामना करेगा। ये बाइबल बताता है जो एक बार जन्म लेगा वो दो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अगर एक बार जन्म लिया आपने केवल शरीर में जन्मे हैं तो शारीरिक मृत्यु तो है, उससे कोई अलग नहीं करता, लेकिन दूसरी मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, आग की झील में डाल। यदि आपने दो बार जन्म लिया, एक शारीरिक जन्म है दूसरा आत्मिक जन्म है, कि आपने प्रभु पर विश्वास करके उसको अपने जीवन का प्रभु धर्म करता, तो दूसरी मृत्यु आपके ऊपर कोई राज नहीं होगा। यहां पर वो कह रहा है स्मृति की कलीसिया को, वो उनको कह रहा है कि तू कष्ट सारा सब कुछ सारा सारी चीजें, लेकिन इस बात को ध्यान रख, अगर तू अंत तक विश्वास युग बना रहेगा, इस पर विजय पाएगा तो तेरा भाग्य होगा। मेरे प्रियो कितना सुंदर हो जब मेरे और आपको भाग उस दूसरी मृत्यु से अलग रहने का हो। दूसरी मृत्यु से अलग रहना मतलब ये है, आग मतलब जहां परमेश्वर से रहित हम जीवन को व्यतीत करेंगे, जहां परमेश्वर नहीं वहां अंधकार है, बहुत भयंकर स्थिति होगी, पानी मांगेंगे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वहां तो ना प्यास होगी ना रात होगी ना अंधकार होगा ना कुछ होगा, कुछ और है। इसलिए प्रकाश इस 20-21 अध्याय को जरूर पढ़िए, सोचिए विचारिए प्रार्थना कीजिए जरूर, अगर नहीं पढ़ा फिर मैं कहूंगा इस हफ्ते में 19-20-21 अध्याय आखिरी 3 और 4 अध्याय पढ़िए। एक और दे 21 अध्याय का 8 पद, परंतु डरपोक को अविश्वासियों घृणितों हत्यारों व्यभिचारियों जादूकरों मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। जो आग और गंधक से जलती रहती है जो दूसरी मृत्यु, विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत तो हमारा भाग उसमें नहीं होगा। सो यहां पर इफिसियों कलीसिया में हम देखते हैं जो जय पाए, कह रहा जिसके सुनने के कानों सुन ले कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके सुनने के कानों सुन ले। आज मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं, हमने इसीलिए प्रार्थना करी प्रभु हमें समझने की बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, इच्छा दीजिए, और हम सच में परमेश्वर के वचन का प्रत्युत्तर दे सके। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु, परमेश्वर ने मुझे पराजित जीवन के लिए नहीं एक विजयी जीवन के लिए बुलाया है। हर कलीसिया के बाद आप आखिर में ये शब्द पाएंगे, जिसके सुनने के कानों सुन ले, जो जय पाए। आप सोच लीजिए विचार कर लीजिए तो मुझे और आपको क्या प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे वो जीवन दीजिए जो एक विजय का जीवन हो, जिससे मैं विजय प्राप्त करके इस संसार में जी सकूं। मुझे नहीं मालूम 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल कितने साल जाना, लेकिन एक अनंत है असंख्य साल, हम नहीं जानते कब तक आया। तो हमारा चुनाव ये, इस चुनाव में हम क्या चाहते हैं, आज का चुनाव हमारे कल को निर्धारित करेगा। आज आप क्या चुनना चाहते हैं, प्रभु आपकी सहायता करें, मेरी सहायता करें, हम परमेश्वर के विश्वास में और अधिक मजबूत हो सके। Thank you.